हरि भद्रम् नो अपि वाचयमन ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो सैखवे नः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्न ज्ञानस्वरूपं निर्भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का दान करें।
राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। जय जय राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जय महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कपिलोपाख्यान की प्रस्तावना श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना किस प्रकार से देवहूति ने राजभवन का परित्याग करके कर्दम की कुटिया को स्वीकार किया। उन्होंने न केवल सारे भोगों का त्याग करके ऋषि का वरण किया, अपितु आध्यात्मिकता की जो मूल आधारशिला है, जिसको हम धैर्य कहते हैं, प्रतीक्षा कहते हैं, उसमें भी वो पारंगत हुई। आप लोगों ने गौर किया होगा, आदमी जब कोई चीज सीखना चाहता है तो उसमें हड़बड़ी बहुत करता है। उसे लगता है कि जल्दी सब आ जाए, जल्दी हम उसको प्राप्त कर लें। क्षेत्र वो कोई भी हो, आप चाहे गाड़ी सीखना चाहें, आप चाहे कंप्यूटर सीखना चाहें, आप चाहे संगीत सीखना चाहें, आप चाहे आध्यात्मिक बनना चाहें, हर जगह व्यक्ति के अंदर में धैर्यता जवाब दे जाती। उसे लगता है कि कितनी जल्दी हो जाए और मुझे सब कुछ आ जाए। ये भी सब जानते हैं कि जब संसार की सामान्य चीजें, संसार का सामान्य ज्ञान बिना धैर्य के नहीं आ सकता, प्रतीक्षा उसके लिए करनी ही पड़ेगी, धैर्य रखना ही पड़ेगा, तो आध्यात्मिकता जिसको शास्त्र जन्म जन्मांतर के पुण्य का परिणाम बताते हैं, वो चीज हड़बड़ी में या जल्दी में कैसे प्राप्त कर सकता है कोई? यहां तो वर्षों गुजर जाते हैं। शास्त्रकार कहते भी हैं कि हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, कईयों ने तो अनेक कल्पों तक तपस्या किया, साधना किया, तब जाकर के वे भगवान की कृपा के पात्र हुए। देवहूति ने वो भी करके दिखाया। वे कर्दम के पास में आई हैं इसलिए कि कर्दम के द्वारा उनको ज्ञान मिलेगा, कर्दम के द्वारा उनको विवेक की प्राप्ति होगी, लेकिन जिस विवेक की अभिलाषा को लेकर कर्दम के पास देवहूति आई, उसे प्राप्त करने की तो बात छोड़ दो, संवाद भी नहीं हुआ। मैंने सुना है 12 वर्ष गुजर गए, बातचीत भी नहीं हुई। जिस अभिलाषा को लेकर के आई, कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं पूछा। आध्यात्मिकता तो छोड़िए, व्यवहारिकता ही बंद हो गई वहां, क्योंकि वे तो समाधि में बैठ गए, वे तो ध्यान करने लगे। और ये शिष्य की परीक्षा है, ये साधक की परीक्षा है कि तुम कितना धैर्य अपने मन में रख सकते हो। आदमी सोचता है कि संत के पास में जाएं, वहां बैठें, वहां चर्चा करें तो फिर फायदा है, अगर चर्चा नहीं होती तो बैठने से क्या मतलब। शास्त्र कहते हैं कि तुम बैठो तो सही, बैठने से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे अंदर में पाने की क्षमता तो हो, विवेक, ज्ञान अपने आप आएगा, उस क्षमता को हमने रोक रखा है। लोग कहते हैं कि महात्मा नहीं बताते, लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बताता, और मुझे लगता है कि हमने उसको रोक रखा है आने से। गुरु बताने के लिए तैयार है, गुरु कहने के लिए तैयार है, लेकिन हम आने नहीं देते, हड़बड़ी के कारण, अपने धैर्य को गंवा करके हम जल्दबाजी में रहते हैं। मैंने सुना है कि दिल्ली में कोई संत थे जिन्होंने लिख रखा था यहां आत्म साक्षात्कार कराया जाता है, पुरानी बात है, और एक आदमी पहुंचा सूट बूट पहन के, हाथ में सूटकेस लेके, कहा करवा दीजिए आत्म साक्षात्कार, जल्दी में हूं, ऑफिस जाना है। तो महात्मा ने कहा अभी तो आए हो, बैठो, सत्संग करो, बात करो, जब बहुकाल करिए सत्संगा। यहां तो ये ऐसा होता है कि जब बहुत समय तक सत्संग करो तब जाकर के संदेह की निवृत्ति होती, और तुम तो कहते हो कि आए हैं और जा रहे हैं, इतनी जल्दी कहीं ज्ञान प्राप्त होता है? इतनी जल्दी कहीं विवेक की प्राप्ति होती है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ और सोच के आया था। महात्मा ने कहा क्या? बोले मैंने सोचा था कि जैसे विज्ञान ने उन्नति कर ली, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, आप महात्माओं ने भी उन्नति की होगी, आप महात्माओं ने भी खोज की होगी। पहले लोग प्रकाश के लिए कितनी परेशानी झेलते थे, कितना परिश्रम करते थे, अब क्या है, स्विच ऑन करो, बटन दबाओ, प्रकाश हो जाता, अंधकार मिट जाता है। तो क्या तुम महात्माओं ने कभी कोई खोज नहीं की? तुम महात्माओं ने कोई कमाल नहीं किया कि चुटकी बजाओ और ज्ञान हो जाए, यहां ताली बजाओ और वहां पर ज्ञान प्रकट हो जाए, मन का संपूर्ण अंधकार अज्ञान समाप्त हो जाए? महात्मा ने किया। महात्मा ने कहा विज्ञान ने तो बहुत बाद में खोज की, महात्माओं ने तो इसको पहले से ही खोज लिया। चुटकी बजाते ही ज्ञान होने की संभावना व्यक्त पहले ही कर चुके हैं। और आपने सुना ही होगा, राजा का नाम भूल रहा हूं, खटवांग, कि जो रथ पर चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते ज्ञान हो गया। तो यहां तो संभावनाएं पूरी है, लेकिन तुम हमको एक बात समझा दो। तो उसने कहा क्या? बोले तुम कहते हो कि बटन दबाओ और प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है, क्या संभव है? बोले बिल्कुल। तो महात्मा ने बटन पड़ा था, एक स्विच दे दिया, बोले लो पकड़ो, इसको दबाओ जरा, देखें कैसे प्रकाश होता है। कहता ऐसे थोड़ी होगा। तो बोले इसको वायर से कनेक्ट कीजिए, स्विच बोर्ड से कनेक्ट कीजिए, उस वायर को फिर वल्व से कनेक्ट हो, संबंध हो, और मात्र वल्व से ही नहीं, वल्व का स्विच का आपस में संबंध होने के अतिरिक्त उसका पावर से भी कनेक्शन होना चाहिए, और फिर उस पावर वाला जो बोर्ड है उसका कनेक्शन बाहर जो मेन लाइन है उससे कनेक्शन होना चाहिए, और जो वो मेन लाइन जा रही है वो जहां से पावर हाउस से निकली है वहां से उसको कनेक्ट होना चाहिए। मूलतः बात यह है कि जहां से बिजली पैदा होनी शुरू ही आरंभ हुआ वहां से लेकर के और यहां तक सारे संबंध, सारे कनेक्शन ठीक होने चाहिए, तब जाकर के स्विच ऑन करोगे तो प्रकाश होगा। ये सच है। अगर जहां से बिजली पैदा हुई वहां से लेकर के और आपके स्विच तक कहीं भी अगर एक जगह खराबी आ गई तो तुम्हारा स्विच कोई काम नहीं करने वाला। महात्मा ने कहा तुम्हारे तो सारे कनेक्शन ही फ्यूज पड़े हुए हा? तुम कैसे सोचते हो कि चुटकी बजाने से ज्ञान हो जाएगा? अपने कनेक्शनों को तो ठीक करो। ये जो कनेक्शन ठीक होना है इसी का नाम साधना है, ये जो कनेक्शन ठीक होना है इसी का नाम साधन चतुष्टय की संपन्नता है। विवेक से पहले साधन चतुष्टय की संपन्नता का मतलब है कि तुम्हारे कनेक्शनों को सुधारो, जो फ्यूज उड़े हुए हैं उनको जरा जोड़ो, उनको जरा देखो, उनको ठीक करो। और तुम नहीं कर सकते, तुम अपने घर के बोर्ड के उड़े हुए फ्यूज को नहीं सुधार सकते, तो मैकेनिक को बुलाओ। तुम्हारी क्षमता से जब बाहर बात हो जाती है तो आप हाथ नहीं डालते, अगर छोटी मोटी खराबियां हैं तो आप कोशिश करते हो कि देख लेते हैं खुद ही ठीक हो जाए तो, लेकिन जब तुम्हारी क्षमता से ऊपर बात हो जाती है तो तब आप मैकेनिक को बुलाते हैं कि ये हमारे बाहर की बात है, अब ठीक करो आप। मैकेनिक आता है, झट से कर देता है, उसे समय नहीं लगता, क्योंकि उसे ज्ञान है, क्योंकि उसे बोध है, उसका अभ्यास है, उसे मालूम है कि कहां कोई गड़बड़ी कैसे हो सकती है, उसे ठीक करने में परेशानी नहीं आती। शास्त्र कहते हैं तुम्हारे अपने कनेक्शन जो उड़े पड़े हैं उन्हें तुम सुधार सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन संभावना कम है कि हमें सुधारना आता हो। हम सुधारने के चक्कर में और बिगाड़ डालते हैं, और ज्यादातर ऐसा होता है अभिमानी आदमी मैकेनिक को बुलाने की जगह खुद करना चाहता है। शास्त्र कहते हैं अगर तुम अपने आप में सामर्थ्य गंवा देते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपने कनेक्शनों को ठीक करने का सामर्थ्य नहीं रखते हो तो किसी गुरु को बुलाओ, वो तुम्हारे कनेक्शनों को ठीक करेगा, वो तुम्हारे उड़े हुए फ्यूजों को जोड़ेगा और तुम्हारे अंदर में उस ज्ञान के प्रकाश को पैदा करेगा। तो ये सारी कथा, सारी कहानी, सारा उपदेश एक ही चीज कहता है कि धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। शबरी की कथा कौन नहीं जानता? गुरु की बात पर विश्वास किया, गुरु की बात पर श्रद्धा की, उसे मालूम है कि मरने से पहले भगवान जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? तुमने कुछ किया? तो कहा वो नहीं मालूम मुझे, मैंने कुछ किया मुझे पता नहीं, मेरे मन में योग्यता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा है इसलिए मुझे भरोसा है कि वो आएंगे जरूर। ये विश्वास का परिणाम था कि परमात्मा चल करके गया। देवहूति ने बारह वर्ष तक तप किया, बारह वर्ष तक साधना की। साधना किया कर्दम ने, लेकिन मूलतः कर्दम तो पहले ही साधना कर चुके थे। देवहूति की प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा की परीक्षा थी, धैर्य की परीक्षा थी, और उसमें विखरी उतरी। कल आपने सुना उन्होंने मांगने के लिए कहा कि मांगो, तो उन्होंने कहा महाराज हमें मांगने की जरूरत ही नहीं, और एक चीज बाद में जो मांगी वो था विवेक, हमें तो पुत्र चाहिए और कोई अभिलाषा नहीं। साथ में उन्होंने कहा कि हम लोग तो कुटिया में रह लिए जैसे तैसे, और हमें कोई अभिलाषा उस चीज की नहीं है, लेकिन आने वाला जो मेहमान है उसको थोड़ा एक छोटी सी कुटिया मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कर्दम ने कहा बस इतनी सी बात, अपना चमत्कार दिखाया, संकल्प से दुनिया भर का एक सुंदर सा विमान संपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित और प्रकट किया और कहा कि आप इसमें प्रवेश करें। देवहूति का शरीर तो बहुत सुंदर था पहले, लेकिन तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत कृशकाय हो गया था, दुबला पतला हो गया था, झुर्रियां पड़ गई थी, सुंदर केश राशि जटा बन गई थी, और ऐसी अवस्था में उस सुंदर विमान में चढ़ने में उनको संकोच हुआ कि कैसे जाऊं। मन की भावनाओं को कर्दम ने समझा। यहां एक बात फिर भाती है मुझे, यह है व्यवहारिकता, कि पत्नी ने अपनी उस दुरा अवस्था को व्यक्त नहीं किया। वे दुखी हैं, दुखी मतलब संकुचित हैं मन में कि मैं इस विमान में चढ़ने की योग्यता नहीं रखती हूं, क्योंकि मेरे पास सुंदर कपड़े नहीं है, क्योंकि मेरे पास सुंदर शरीर नहीं है, क्योंकि मेरे पास सौंदर्य का अभाव है। लेकिन इस अभाव की चर्चा भी करती नहीं, इस अभाव को भी कहती नहीं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कहूंगी तो पति के मन में संकोच होगा। अभी मैं कह चुकी हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं इस अभाव को कहूं तो ये दोनों बातें विपरीत हो जाएंगी। वे नहीं कहती। अच्छा, पत्नी अगर कहे नहीं तो क्या पति को पत्नी की हालत को नहीं समझना चाहिए? जरूरी है कि पत्नी जब बोले तभी पति समझे? यह व्यवहारिकता है। कर्दम ने देखा कि चढ़ने में संकोच कर रही, कारण क्या है, स्वयं समझ लिया। यह साबित करता है कि वहां पति पत्नी दो नहीं, एक ही है, कि पत्नी के मन में संकोच पैदा हुआ, पति ने उसको समझ लिया। इतना सामंजस्य अगर पति पत्नी में आपस में व्यवहार में हो तो झगड़े की नौबत कैसे आ सकती है, जरा सोचो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुरंत उन्होंने कहा कि तुम्हारे संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला ये बिंदु सरोवर है, इसमें स्नान करो। कर्दम के कहने पर देवहूति ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, एक और चमत्कार महात्मा का दिखाई पड़ा। वहां सुंदर महल था, जल के अंदर में हजार दासियां आ गईं। हे राजकुमारी जी, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। उनका सुंदर श्रृंगार किया, जितनी सुंदर देवहूति पहले थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई, और श्रृंगार करके बाहर निकली। कर्दम देखते रह गए। उन्होंने स्वयं स्नान किया और स्वयं वो दिव्य बने और विमान में चढ़े। महात्माओं ने यहां एक संकेत और किया है कि देवहूति को पहले उन्होंने भगवान के आंसुओं से बने हुए बिंदु सरोवर में स्नान करवाया, योग्य बनाया, उसके बाद उनके साथ में विहार किया। शास्त्रकार कहते हैं कि संसार के संपूर्ण भोगों को तुम भोगो, निषेध नहीं है, चाहे वो विवाह हो, चाहे संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जितने भी पदार्थ हैं, लेकिन उनको पवित्र करके भोगो। आप भोजन करते हो, रसगुल्ला खाते हो, तो शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि मत खाओ, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि इसको भोग लगा करके फिर खाओ। अगर आप भोग लगाते हो तो प्रसाद हो जाता है, तुम्हारा मन भी पवित्र होगा, उन पदार्थों में तुम बंधोगे नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। तो उन्होंने दिव्य बनाया, उसके बाद में उन्होंने विमान में बिठाया, और जितनी तपस्या देवहूति ने की उससे ज्यादा परिणाम व्यवहारिक रूप से कर्दम ने दिया। कोई लोक नहीं छोड़ा जहां वो घुमाने के लिए उनको लेके न गए, सब जगह भ्रमण करवाया, आनंदित किया। इसी बीच में उनको नौ कन्याएं हुई। संत महात्मा ऐसा भी मानते हैं कि ये नौ कन्याएं और कुछ नहीं, ये नौ कन्याएं मूलतः भगवान के आने के पहले की नवधा भक्ति है, ऐसा शास्त्रकार मानते हैं। मुझे देवहूति और कर्दम का आपस का संवाद, आपस का व्यवहार गुरु शिष्य का संवाद लगता है। देवहूति ने प्रतीक्षा किया। आपको पता होगा कि पहले पुरातन काल में ऐसा होता आया है कि गुरु शिष्य के यहां, शिष्य गुरु के यहां जाता था। आजकल की तरह नहीं कि गए और आपने सवाल रखा और समाधान शुरू। शिष्य गया, पहले तो खोज करते थे गुरु की कि कहां होंगे, खोज करने के बाद पहुंचा तो बात भी नहीं करते थे गुरुजी, सत्संग चल रहा है आप आके बैठ जाइए, बस रोज आके बैठो। विचार सागर शायद आपने सुना होगा, एक ग्रंथ है वेदांत का हिंदी में, और कई बार उसकी कई कथाएं सुनी भी होंगी। उसमें एक कथा आती, तीन लड़के थे शुभसंत ती राजा की संतान, और वे तीनों की तीनों विरक्त भाव को पैदा हो गए। खोज करते हुए वो महात्मा के पास पहुंचे, गुरुजी के पास पहुंचे आश्रम में। वहां गए तो 6 महीने तक वो रहे, गुरुजी ने यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस आश्रम में 6 महीने तक रहे, और जब 6 महीने तक वो रहे, सेवा करते रहे, चुपचाप रहे, सत्संग सुनते रहे, तब 6 महीने के बाद में गुरुजी ने पूछा कि भाई तुम कौन लोग हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहां किस लिए आए हो। तब जाकर के संवाद हुआ। यही हाल देवहूति का यहां हुआ। उन्होंने वर्षों तक साधना किया, तप किया, और तब जाकर के कर्दम ने पहले ये लालच दिया कि तुम्हें चाहिए क्या। ये साधक की परीक्षा है। अगर संसार के प्रति आकर्षण तुम्हारे मन में साधना के बाद भी नहीं गया है तो तुम वेदांत को क्या समझोगे। साधना के बाद भी अगर संसार का आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है तो ज्ञान और भक्ति हमारे अंदर में पैदा कैसे होंगी। तो आप शब्दों पर गौर कीजिए, तुष्टो हमद तब मान अभिमान दाया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगती हो। इस मांगने में सब कुछ छिपा है, और तुम्हारे कहने में भी सब कुछ प्रकट हो जाता है कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। विवेक की वहां पर अभिलाषा व्यक्त की, और उसके बाद जो उनका विहार है, पत्नी को लेकर के गए, तीनों लोकों में भ्रमण करवाया, वहां विहार किया। ये विहार क्या है, ये कहा कि गुरु और शिष्य के बीच का जो ध्यान करवाना है, आदि आदि जो क्रियाएं हैं, जितनी भी योग अवस्था की क्रियाएं हैं, उन सब का वर्णन समझना चाहिए। वहां नवधा भक्ति अंदर में प्रकट हुई, और जब भक्ति प्रकट हुई तब कर्दम ने जैसा कि पहले कहा था कि संतान होने के बाद में मैं संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा, तो कथा ये कहती है कि वे अपनी तैयारी करने लगे जाने के लिए, और तब भगवान वेदव्यास जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देवहूति पास में पहुंची और लिखन्ते दो मुखी भूमि पदा नख मनीषिया वाच ललिताम वाचम निरुद्ध्या शुकलाम शनई। प्रेम पूर्वक उन्होंने जब कर्दम को तैयारी करते हुए देखा तो मन भराया, मन से बोलना चाहती हैं कि मैं कुछ कहूं, लेकिन गला भराया, कैसे कहें, शब्द नहीं निकल रहे। तो यहां सुंदर साहित्य का दर्शन करवाया है कि लिखन्ति धो मुखी भूमिम पदा नख मनीषिया, अपने पैर के अंगूठे से और जमीन को कुरेदने लगी। जब लड़कियां शर्माती हैं गांव में, ऐसा देखा देखने में आता है, यहां तो पत्थर ही है, कहां कुरेदेगा कोई, तो वहां अंगूठे से उसको कुरेदने लगी। और भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं ऐसा लगता है जैसे भी अपने मन के भावों को जमीन में अपने अंगूठे से लिख रही हूं। लेकिन बाद में लिखा ये लिखना शायद कर्दम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए बोलना ही चाहिए। तो बड़ी ही मधुर भाषा में अपनी बात को कहा। ये भी व्यवहार है कि तुम्हारे मन के विपरीत जब कोई कर्म तुम्हारा घरवाला कर रहा हो, तुम्हारे मन के विपरीत जब कोई आचरण तुम्हारे परिवार का कोई बड़ा सदस्य कर रहा हो, तो आप उसको कैसे कहें, उसका विरोध कैसे करें। आप झपट मत पढ़िए, आप टूट मत, अच्छा तुमने ये किया, हिम्मत तुम्हारी कैसे पड़ी, आदि आदि, इस तरीके से व्यवहार नहीं होता है। और अपनी मिठास को कभी खत्म मत करो। मैं स्वामी जी को सुन रहा था, खन्ना जी महाराज को, उन्होंने कहा महात्मा कैसा होना चाहिए, बोले शक्कर की तरह होना चाहिए, चारों तरफ से मीठा होता है ना शक्कर, शक्कर का दाना नीचे से ऊपर से आगे से पीछे से कहीं से भी खाओ वो हमेशा मधुर होता है। साधक को बहुत ख्याल रखना है अपनी मधुरता का। साधक में कटुता अगर आ गई तो खत्म हो गया साधक, बड़ा कष्ट होता है। किसी साधक में कटुता देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि फिर उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। साधक होने के बाद अगर उसमें कटुता का आरंभ हो गया तो सिद्ध होने के बाद में तो वो कटुता पराकाष्ठा पर पहुंचेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपका जीवन माधुर्य पूर्ण हो, आपकी मधुरता दिखनी भी चाहिए। लोग कहते हैं कि साधक के जो गुण है वो छुपे रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि माधुर्य एक ऐसा गुण है जो प्रकट ही होना चाहिए, इसको छुपा के मत रखना, क्योंकि इसको छुपा के रखने में कोई फायदा नहीं। कितना आप प्रेम से बोल सकते हैं, कितना आप दिल जीतने वाली बात कर सकते हैं, कितना आप मन को सुख पहुंचाने वाली बात कह सकते हैं। अपनी क्रियाओं से, अपने वचन से, अपने व्यवहार से हर तरह से आप मधुरता पूर्वक व्यवहार करें, सामने वाला दंग रह जाए, क्या बात है। ये सत्संग का प्रभाव होना चाहिए, ये सत्संग का परिणाम होना चाहिए। हम सुनते हैं, मैं कई बार सोचता हूं कि हम सुनते हैं, सुनने के बाद में अगर किसी को कहें कि आप सत्संग में चलो, और वो आदमी कहे कि सत्संग में आप जाते हो क्या मिला वहां, हम क्या कहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहने की जरूरत न पड़े कि मुझे ये मिला, आपको बोलने की जरूरत न पड़े कि सत्संग में हमने ये पाया, तुम्हारा व्यवहार देख करके लोग खुद समझ जाएं, अच्छा क्या बात है, ये कैसा था और कैसा हो गया, कितना सुंदर। मैंने कैसा था कैसा हो गया मतलब विपरीत नहीं हो जाना, हा? कि अच्छे भले थे और बिगड़ गए, अच्छे भले थे कि क्या हो गया, कितना मधुरता कितना माधुर्य आपकी वाणी में और आपके व्यवहार में हो। ये साधक यहां दिखाया कि इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी साधना करने के बाद भी मन के अनुकूल परिणाम नहीं मिला, तब भी देवहूति का धैर्य जवाब नहीं दे रहा है, तब भी देवहूति के वचनों में कहीं कटुता का पुट नहीं है, तब भी देवहूति बड़े प्रेम से कह रही है, आई थी वे ज्ञान के लिए, आई थी वे विवेक के लिए। और विचार कीजिए कि इतना समय गुजर गया, उसके बाद भी देवहूति एक बार भी ये नहीं कह रहे कि महाराज हम तो विवेक के लिए आए थे, आप कहां घुमा रहे हो हमको। रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज मुनि ने प्रश्न किया है कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए कहा कि आप हमको कथा सुनाई, तो कहा क्या, बोले राम कथा सुनाई। पूछा था राम कथा, सुनना चाहा था राम कथा, और महाराज सुनाने लगे शंकर कथा। शंकर जी का और ऐसे सुनाया का पूरा विवाह सुनाया। अब बताइए ये भी कोई धैर्य की बात, कितना धैर्य होगा उनमें कि हम सुनना चाह रहे हैं कि भगवान कैसे धरा पर प्रकट हुए, भगवान कैसे आए, उन्होंने कैसी कैसी दिव्य लीलाएं की, हम ये सुनना चाह रहे हैं, और वो सुना रहे हैं कि कैसे शंकर जी की बरात में ऊटपटांग लोग थे, हा? वो सुना रहे हैं कि को मुख हुईन विपुल मुख काहू, किसी के एक भी मुख नहीं है, किसी के चेहरे चेहरे, ये सुनकर के आदमी खींच जाएगा कि पागल कर रखा है आपने, हमको पागल समझ रखा है कि हम सुनना चाह रहे हैं ज्ञान की उस पराकाष्ठा को, और आप सुना रहे हैं कि को मुख हीन विपुल मुख काहू, भूतों की बरात सुना रहे हैं। लेकिन वो धैर्य पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक सुन रहे हैं। और आप रामायण पढ़ना कि शिवजी का विवाह गुजर गया, सारी बातें हो गई, और तब भी वो चुपचाप बैठे रहे, आनंदित होते रहे, प्रफुल्लित होते रहे। और तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मान गए तुमको, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुम सच्चे अधिकारी हो कि हमने जो सुनाया तुम श्रद्धा पूर्वक सुनते रहे, और ये विश्वास तुम्हारे मन में होना चाहिए कि तो जो तुम सुनना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन धैर्य तो रखो, हड़बड़ी मत करो, आगे मत बढ़ो। देवहूति ने अपने शब्दों में एक बार भी नहीं कहा कि महाराज आप तो जाने की तैयारी कर रहे हो और हमारे पास में हमको वो मिला ही नहीं। जब ये देखा कि चले न जाए, तब अपनी बात को आज मजबूरी में उनको रखना पड़ रहा है, और तब भी उसी मधुरता के साथ में, उसी प्रेम के साथ में, उसी निश्चलता के साथ में, कहीं मन में कोई दुर्भाव नहीं है, कोई कहीं मन में कोई कपट नहीं है। उवाच ललिताम वाचम निरुध्या शुक्लाम शनैः, मधुर वाणी से भरे हुए कंठ से उन्होंने कहना शुरू किया, कहती क्या है, सर्वम तद भगवान मह्यम उपोपाह प्रतिश्रुतम, आपने जो कुछ कहा था वो सब सत्य कर दिया, जो कुछ बोला था वो सब सत्य कर दिया। सत्य कहां किया, लेकिन किया। देवहूति ने कहा कि आपने कहा था कि जब तक संतान नहीं होगी गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, अब नौ कन्याएं हो गई, अब रहने की जरूरत नहीं, आपने अपनी वाणी को सत्य किया। लेकिन एक प्रार्थना हमारी है, करदम ने कहा क्या, तो कहा हमने तो ऐसा सुना था कि भूल से भी अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आदमी का साथ करे तो उस संग का उस व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है, भूल से भी करे तो, अनजाने में भी करे, अनजाने में भी अगर व्यक्ति का गर्म तवे के ऊपर हाथ पड़ जाए तो वो अग्नि जला देगी। तुमने जानबूझकर हाथ लगाया ये मायने नहीं रखता, अनजाने में लगाया, क्रोध से लगाया, प्रेम से लगाया, ये महत्व की बात नहीं है। अग्नि से आपका स्पर्श हुआ, वो अग्नि आपको जलाएगी जरूर। करदम ने कहा तो, बोले जब धोखे से किया गया दुष्ट का साथ भी अपना प्रभाव डाल सकता है, तो जानबूझ करके किया गया महात्मा का साथ क्या असर नहीं डाल सकता। हम तो ये सोच करके आई थी कि यहां आपके ज्ञान की निर्मल बात हमें सुनने को मिलेगी। अब देखिए यहां शिकायत नहीं है, कोई समझ सकता है कि देवहूति ने शिकायत किया कि देखो अब तो कहा कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई थी, लेकिन आपने तो वो दिया ही नहीं, ये नहीं कह रही है, कह क्या रही है कि हमने ये सोच करके हम आई थी कि आपके पास में जो निर्मल ज्ञान है वो हमें प्राप्त होगा, लेकिन हम तो संसार की मोह माया में ही उलझे रहे, मैंने तो आपसे संसार की ही मांग की। देखिए अपनी गलती निकाल रही है कि हम ही फंसे रहे, हमने ही याद नहीं दिलाया आपको, इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आजकल अगर कोई गुरु से ये कहे, अगर गुरु न बताए न कहे तो तुरंत ये कहना शुरू कर दे महाराज आपने तो कुछ उपदेश दिया ही नहीं, तो कहा तुमने याद, अच्छा हमको याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी, हम तो ये सोचते थे कि आप अपने आप कहोगे। तो यहां देवती ने स्वयं अपनी गलती को स्वीकार किया, मानती है कि संसार की हम व्यवहार में इतने उलझ गए और भोगों में इतने रत हो गए। देवहूति जैसी महिला जिसने कितनी साधना किया तपस्या किया और वो कर्दम से कहती है कि हम तो भोगों में उलझ गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो विवेक क्या है, आपके उस ऐश्वर्य को हमने प्राप्त नहीं किया, आप तो चले जाओगे, मेरा क्या होगा, हमारे लिए कोई आशय देके जाइए। हम आपको जाने से नहीं रोक रही है, हम एक ही अभिलाषा करती है कि आप जाओ तो एक कोई आसरा कोई सहारा हमारे लिए छोड़ जाओ, फिर उसके बाद में आप चले जाओ। क्यों? तब उन्होंने एक सिद्धांत का वर्णन किया, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पथ सेवाये जीवन न पिमृतो ही सह। जीवन के संपूर्ण सार को निचोड़ करके उन्होंने रख दिया। तुमने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है? तो कहा आप अगर मनुष्य हैं तो नेह यत कर्म धर्माय। पूछा कि आपने कभी धर्म किया, शुभ कर्म किया है? तो क्या किया? बोले अगर आपके शरीर से धर्म और कर्म हो रहा है तो आप समझो मनुष्य हो, वरना मनुष्यता के अभिमान को छोड़ दो, मनुष्यता के झूठे अभिमान का परित्याग कर दो। क्योंकि अगर शरीर में धर्म नहीं, शरीर में क्रिया नहीं, शरीर में शुभ कर्म नहीं, तो फिर उस पशु में और मनुष्य में क्या फर्क है? मात्र हम मनुष्य के मानव शरीर के आवरण को ओढ़े हुए हैं, मानवता हमारे अंदर में नहीं, इंसानियत नहीं। नेह यत कर्म धर्म आया, जिसने अपने शरीर से कभी शुभ कर्म नहीं किए वो व्यक्ति। अच्छा दूसरी बात देवहूति कहती है कि आपने धर्म किया? बोले हाँ। तो कहा इसकी कसौटी भी कसनी चाहिए, आप धार्मिक हैं या नहीं इसकी कसौटी देवहूति ने दी कि पता चल जाएगा कि आप वास्तव में धार्मिक हैं या जैसे मनुष्य बनावटी हैं, कहीं धर्म भी वैसे बनावटी तो नहीं है हमारे अंदर में। इस बात को ध्यान से देखना कि जैसे शरीर हमारा मानव का है, एक व्यक्ति जो दुष्कर्म करता है, एक व्यक्ति जो अधर्म करता है, एक व्यक्ति जो पाप करता है, एक व्यक्ति जो कत्ल करता है देखने में लगता है, एक व्यक्ति जो शास्त्र विरोधी है देखने में लगता है कि वो मनुष्य है, लेकिन मान्यता के अनुसार वो मनुष्य का मात्र आवरण लिए हुए है, वास्तव में वो मनुष्य नहीं है। देवहूति ने दूसरी बात भी बड़ी प्यारी कही कि जैसे वो व्यक्ति मानव का आवरण लिए हुए है मनुष्य नहीं है, ठीक है ऐसे ही दूसरा एक और व्यक्ति है जो धर्म कर रहा है, जो शुभ कर्म कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन कहीं ये पूजा करना, दान करना, धर्म करना ये भी आवरण ही तो नहीं है? ये धर्म वास्तविक धर्म है या नहीं? तो कहा पता कैसे चलेगा? देवती ने कहा न विरागाय कल्पते, अगर आप धर्म कर रहे हो, वास्तव में धर्म करने वाले हो तो धर्म ते विरत, धर्म अगर करोगे तो वैराग्य हो जाएगा। सच्चा जो धार्मिक होगा, सच्चा जो धर्म करने वाला व्यक्ति होगा, उसके शरीर के अंदर में मन के अंदर में वैराग्य होना ही होना है, होगा ही होगा, अन्यथा धर्म का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वैराग्य का मतलब फिर समझना, वैराग्य का मतलब पदार्थों को छोड़ना नहीं है, वैराग्य का मतलब है कि आसक्ति रहित हो जाना, विरक्त का मतलब है रत रहित होना, किसी पदार्थ में आप डूबे नहीं है, इसका मतलब यही है। तो अगर संसार के पदार्थों में आप डूबे नहीं है, अगर संसार के पदार्थों में आप उलझे हुए नहीं है, अगर संसार के पदार्थों में आपका लगाव नहीं है, तो देवहूति कहती है तो आप धार्मिक है, तो जीवन आपका सफल है, ठीक है। तीसरी एक और बात सावधान करती है कि कहीं आपका वैराग्य भी नकली तो नहीं, कहीं वैराग्य भी आवरण तो नहीं है, कहीं वैराग्य भी ढकोसला तो नहीं, ढकोसला बोलते हैं दंभ तो नहीं, पाखंड तो नहीं है कि हमने छोड़ दिया लेकिन वास्तव में छूटा ही नहीं। अखंडानंद जी महाराज के पास में आश्रम में कोई व्यक्ति आया और आकर के उसने कहा कि मैं संत बनना चाहता हूं। महाराज जी ने कहा अच्छी बात, तो कहा आपको मालूम नहीं है? तो महाराज जी ने कहा क्या? बोले मैं अपनी जितनी भी मेरी डिग्रियां थी, उपाधियां थी, मैंने पीएचडी किया, मैंने एमए किया, मैंने एमबीए किया, क्या क्या, वो सारी सारी की डिग्रियां मैं नदी में बहा के आया हूं, इतना बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैंने आपको चुना है, क्योंकि मैं इतना बड़ा त्यागी हूं तो फिर उतने बड़े महात्मा को चुनना चाहिए गुरु बनाने के लिए, इसलिए मैंने आपको चुना है। महाराज जी मुस्कुराए, महाराज जी ने कहा कि तुम नदी में छोड़ा है लेकिन वो डिग्रियां छूटी नहीं है। छूट गई तो याद करने से क्या लाभ, छूट गई तो स्मरण करने से क्या लाभ। और इस विषय में हमारे गुरुदेव एक बड़ी कड़वी भी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहने में थोड़ा हमको अजीब लगता है, उन्हें नहीं लगता है, वो सहजता से कह जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम सुबह सुबह अपना पेट खाली करते हो तो उस पर अभिमान करते हो कि मैंने उसको छोड़ा, उस गंदगी को, उस विष्ठा को, उस मल को त्याग करने में तुम्हें कोई अहंकार है? उस मल का परित्याग करने में तुम कभी माइक में खड़े होकर बोलते हो कि मैंने उसका त्याग किया? अभिमान करते हो? नहीं करते। संत कहते हैं, हमारे महाराज कहते हैं कि संसार के पदार्थ, माया के पदार्थ उस महात्मा की दृष्टि में, उस साधु की दृष्टि में, उस संत की दृष्टि में उस मल के ही बराबर है, वहां कोई कीमत नहीं। उनके त्याग का भी अगर तुमने अभिमान किया, उनके त्याग का भी अगर तुमने अहंकार किया, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे मन में अभी भी बैठा हुआ है, उसका महत्व अभी भी तुम्हारे मन में रखा हुआ है। मैं कल एक कहानी पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कबीर के पास, कबीर का लड़का भी था कमाल, कबीर के पास में लोग आते, बड़ी विचित्र बात है, कबीर के पास में लोग आते कुछ धन चढ़ाने के लिए, कुछ रुपया या सोना चांदी जो कुछ भी, हीरे जवाहरात, तो कबीर कहते हैं तो मिट्टी है, इसका हम क्या करेंगे, इसको लेके जाओ, वो वापस कर देते। कमाल बाहर बैठा रहता, कमाल कहता कि ये मिट्टी पत्थर है, इसको ले जाके क्या करोगे, यही छोड़ो। जब मिट्टी ही मिट्टी है, ये पत्थर ही है, कंकड़ ही है, तो उसको ले जाके क्या करोगे, एक बार तुम लाने के लिए मेहनत कर रहे हो, अब ले जाने के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है, यही छोड़ दो। लोगों ने कबीर से शिकायत किया कि तुम्हारा बेटा, ये उम्मीद नहीं थी कि कंकड़ के बहाने और वो सारे हीरे जवाहरातों को रखवा लेता है, ये तो गलत है। कबीर ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि तुम ऐसा करते हो? कमाल ने कहा बिल्कुल करता हूं। तो कहा ऐसा क्यों करते हो? तो कहा आप ही तो कहते हो कि वो कंकड़ है, आप ही तो कहते हो कि मिट्टी है, तो उसको रखने से फायदा क्या? आप कहते हो कि रखने से फायदा क्या, मैं कहता हूं ले जाने से फायदा क्या, आप ही की बात को पूरा कर रहा हूं। कबीर को गुस्सा आया, बोले तो हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, निकाल दिया, बोले तुम अलग हो जाओ, उसको अलग कर दिया। वहां जो राजा था उसको जब पता चला कि कमाल को अलग कर दिया, वो आया कबीर के पास में, पूछा कि आपका बेटा? बोले वो थोड़ा ऐसा नादानी करने लगा था, तो उसने सोचा कि परीक्षा करनी चाहिए। एक सुंदर हीरा लेकर के गया, कमाल के पास में पहुंचा, कहा महाराज ये, तो कहा ये तो कंकड़ पत्थर है, इसका मैं क्या करूंगा? तो कहा ले जाऊं। बोले ले जाके क्या करोगे, ढोने से फायदा क्या, ये कंकड़ पत्थर है, एक बार लाने, वही बात दोहराई उसने, एक बार लाने के लिए मेहनत की, अब ले जाने के लिए मेहनत करोगे, ठीक नहीं है, छोड़ दो इसको। बहुत अच्छी बात। राजा ने कहा कि कहां रखूं, राजा ने कहा कि इसको रखूं कहां, आप कहते हो कि लेना भी नहीं है, आप कहते हो कि ले भी मत जाओ, तो रखूं कहां। कमाल ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि अभी भी तुम नहीं समझे, अगर तुम्हारे हाथ में कंकड़ होता तो उस कंकड़ को पूछने के लिए, तुम रखने के लिए हमसे पूछते कि कहां रखूं, अरे ये कंकड़ ही है, इसको रखने के लिए पूछने की क्या जरूरत है, नहीं समझ रहे हैं? तुम अभी भी यही मान रहे हो कि ये हीरा है, तुम अभी भी मान रहे हो कि इसकी कीमत है, इसलिए तो तुम्हारे मन में ये सवाल पैदा हुआ कि इसको रखूं कहां। मैं कह रहा हूं कि ये कंकड़ है, इसको गौर से सुनो, ये कंकड़ है, इसको रखने के लिए पूछने की जरूरत नहीं, कहीं भी डाल दो, कहीं भी पटक दो, इसके हमारे कोई मायने नहीं है। राजा को भरोसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, ये सच है कि वाकई ढोंग है, क्या है? तो मन में, उसके मन में तो पत्थर नहीं हुआ, उसने वहीं पर कहीं उसके झोपड़ी में लगा दिया उसको। दिन गुजर गए, राजा आया, प्रणाम किया और कहा महाराज कि मैं आपको एक हीरा देकर के, वही कंकड़ पत्थर दे के गया था, वो कहां है? तो कहा तुम अभी भी उसे हीरा मानते हो? मेरी नजर में वो कंकड़ पत्थर था, आज भी है, और मुझे क्या मालूम कि कहां है। तो कहा ऐसा तो नहीं कि आपने निकाल लिए और आप कह रहे हो कि, बोले मैंने ना निकाला और न मैंने रखवाली की, क्योंकि कंकड़ों की रखवाली करने का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं। अंततो गत्वा मतलब यह हुआ कि उसके मन में वो कंकड़ का भाव वास्तविक था और राजा देने के बाद में भी उसको हीरा ही समझ रहा था। सब कुछ होने के बाद में भी उसे हीरे की ही बुद्धि हुई और बाद में जब उसने देखा उस कुटिया में वो वहीं पर रखा हुआ था, उठाया और कहा कि महाराज ये तो यही पड़ा हुआ है, इसको ले जाऊं। तो कहा अगर पत्थर समझ रहे हो तो छोड़ दो, अगर हीरा समझ रहे हो तो लेके जाओ। ये भाव, ये भावना होनी चाहिए। संसार के प्रति पदार्थों में अगर तुम्हारी महत बुद्धि है, महत बुद्धि, तो लाख कोशिश करो, ये ज्ञान को प्रवेश नहीं होने देगा, ये विवेक को अंदर नहीं जाने देगा, ये भक्ति भाव को अंदर पैदा नहीं होने देगा। जिस विचार सागर का मैंने नाम लिया अभी, उसी विचार सागर में वैराग्य का लक्षण लिखा है, ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सवन को त्याग। ब्रह्म लोक के सुंदर सुंदर भोगों का बखान सुनने के बाद भी एक बार भी मन में यह अभिलाषा नहीं आती कि अगर वो भोग मिल जाए तो कितना अच्छा हो, क्योंकि वहां असारता का भाव है, वहां कोई महत बुद्धि है ही नहीं। इस प्रकार का वैराग्य अगर तुम्हारे जीवन में है तब तो उस वैराग्य की कीमत है। तो कहिए कैसे पता चले कि वैराग्य सच्चा है। तो कहा न तीर्थ पद सेवा यही, अगर आपके अंदर में वास्तविक वैराग्य है तो परमात्मा के चरणों में अनुराग भी लेकर के आएगा वो। ध्यान देना, आप चौराहे पर खड़े हुए हैं और आपको पुणे जाना है, बोरीवली जाना है, और एक रास्ता जाता है इंडिया गेट की तरफ, गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, और एक रास्ता जाता है दादर की तरफ, आपको दादर जाना है, तो आप किस रास्ते पर चलोगे? स्वाभाविक है कि दादर वाले रास्ते पर चलोगे, क्योंकि आपको वहां जाना है। तो छूटने वाला जो रास्ता है, जो गेटवे ऑफ इंडिया का रास्ता छूट गया, उस रास्ते के छूटने पर आपको कोई मलाल होगा, कोई कष्ट होगा, या अथवा छोड़ने का अभिमान होगा कि देखो मैंने कितना सुंदर रास्ता छोड़ दिया? किस चीज का अभिमान, जब तुमको कोई लेना ही देना नहीं है, उस पर अभिमान भी किस बात का करोगे? यह वैराग्य। दूसरी बात, जिस समय आपने एक रास्ता छोड़ा, या छोड़ा नहीं, छूट गया, क्योंकि आपने एक रास्ता पकड़ लिया, यही सच्चा वैराग्य है, यही वास्तविक वैराग्य है। एक चीज छूटेगी तो छूटने का मतलब है कि आपने दूसरे को पकड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि संसार को छोड़ दिया, परमात्मा का पता नहीं और हम वैरागी। किस बात की वैराग्य? क्योंकि अधर में व्यक्ति नहीं रह सकता, बीच में व्यक्ति लटका नहीं रह सकता। इसलिए माता जी कहती है कि अगर तुम्हारे जीवन में धर्म है तो वैराग्य जरूर आएगा, अगर तुम्हारे जीवन में वैराग्य है तो परमात्मा के चरणों के प्रति अनुराग जरूर पैदा होगा, और अगर भगवान के प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ तो वैराग्य भी, देवती कहती है कि वो वैराग्य मुझे पागल के वैराग्य से ज्यादा मालूम नहीं पड़ता। जैसे पागल भी कपड़े फाड़ करके फेंक देता है, जैसे पागल भी संसार के पदार्थों में रुचि नहीं रखता, जैसे पागल जमीन की रेत पर सोते हुए गद्दे का अनुभव करता है, जैसे कि शराबी अपने नशे में धुत होकर के सब कुछ भूल जाता है, बस वो व्यक्ति और एक ये व्यक्ति जो अभिमान के मद में चूर होकर के संसार के पदार्थों के परित्याग का अभिमान किए हुए है, उन दोनों में मुझे कोई नजर नहीं है, कोई अंतर नजर नहीं आता, दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन अगर संसार के पदार्थों में अनुरक्ति का भाव खत्म हो गया, परमात्मा के चरणों में प्रेम पैदा हो गया, तो समझो आपका वैराग्य भी सच्चा है। देवोती कहती है, हे प्रभु, हमने ऐसा सुना था, ये तीन चीजें जिसके जीवन में आ गई वही वास्तव उस व्यक्ति ने जीवन को जिया है, जीवन न पिमृतो हिसा, और अगर इन तीन चीजों में से एक भी जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं आई, तो देवोती कहती है हमें लगता है कि वो सांस तो ले रहा है लेकिन आदमी मरा हुआ है, आदमी समाप्त हो गया, इंसान बचा नहीं, फिर खत्म हो गया, उस आदमी में कोई संभावना नहीं। इसलिए तीन चीजें जरूर होनी चाहिए, और विभूति के अनुसार अगर एक चीज हो जाती है तो दूसरी अपने आप आएगी, दूसरी हो जाती है तो तीसरी अपने आप आएगी। आप अगर भोजन करते हो तो भोजन के स्वाद के साथ में तृप्ति लेकर के अपने आप वो पदार्थ आता है, आप खाते जाओगे पेट तृप्त होता जाएगा। ऐसा नहीं कि भोजन करने के बाद में तृप्ति के लिए कुछ और करना पड़ता है आपको, कोई मंत्र बोलना पड़े तब तृप्ति आएगी, या कुछ और काम करना पड़ता है। भोजन करते जाइए, तृप्ति स्वाद लेते जाइए, पेट अपने आप भर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देवहूति कहती है कि आप धर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, वैराग्य जरूर होगा, वैराग्य होगा तो परमात्मा के चरणों में अनुराग भी अवश्य होगा। और मैं एक सीधा रास्ता बताता हूं, वो ये है कि परमात्मा के चरणों में अनुराग कर लो, वैराग्य अपने आप हो जाएगा। संसार को ये डरो मत, ये सोचो मत, ये परेशान मत हो कि संसार कैसे छूटे। ये बड़ी समस्या है कि संसार का छूटना भी समस्या लोगों ने बना लिया, रास्ते को छोड़ना भी समस्या बना लिया। ये समस्या नहीं है। लोग कहते हैं, भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा है हंसोपाख्यान। तो वहां सनकादिक पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज एक कृपा करो। क्या? बोले एक सवाल है, परेशान किए। हमने सुना है कि मन के अंदर में संसार का चिंतन होता है। सनकादिक कहते हैं मन के अंदर में हम भजन करने बैठते हैं तो मन के अंदर में कुछ और ही घटित होने लगता है। हम भगवान का ध्यान करना चाहते हैं तो मन में कुछ और ही दिखने लगता है, बड़े परेशान है। तो कहा जानना क्या चाहते हो? बोले मन से संसार को कैसे दूर करें। सवाल यह है, सनकादिकों ने पूछा मन से संसार को कैसे दूर करें। अच्छा, ये समस्या हम सबकी है, किसी एक की नहीं है, सभी लोग और जितने साधक हैं उन सबकी समस्या ही रहती है। सनकादिकों ने जो पूछा वो हम सबकी समस्या को पूछा। हम सभी लोग जब करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं तो क्या होता है? दो ही चीजें होती है। एक तो जब हम भगवान का भजन करने बैठते हैं तो दुनियादारी दिखती है, और अगर दुनियादारी नहीं दिखेगी तो निद्रा देवी दिखेंगी, नींद आएगी। दोनों से एक ही चीज आने की संभावना है, और जो चीज हम चाहते हैं वो दूर दूर तक नहीं हो पाता। अगर होना भी चाहे, मान लीजिए कि हमने संकल्प किया कि हम 10 मिनट बैठ करके भगवान का चिंतन करेंगे, तो 10 मिनट में पहला मिनट बड़ा बढ़िया जाएगा, अच्छा लगेगा, इतनी खुशी होगी कि बस परमात्मा की बड़ी कृपा होगी, आनंद आएगा। लेकिन दूसरे मिनट में मन कहां चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। माला पूरी हो, अच्छा पूरी हो गई, ठीक है रख देते हैं, यह हालत होती, पता ही नहीं चलता कि मन इतने देर कहां भटकता रहा, कहां जाता रहा, अथवा नींद आएगी। दो में से एक काम होने। तो सनकादिकों का यह प्रश्न हमारा प्रश्न है कि महाराज मन से हम संसार को कैसे दूर करें। कथा कहती है ब्रह्मा जी जवाब दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, क्योंकि वे रजोगुण में प्रवृत्त थे। क्या कहानियां है हमारे यहां। जवाब देने वाले को भी सावधानी बरतनी चाहिए कि जवाब देने वाला जो है उस समय किस प्रवृत्ति में, कहीं उल्टा जवाब न दे जाए। और वहां ईमानदार लोग थे, उन्होंने कहा कि पूछा है, बेटे हैं हमारे, बच्चे हैं, जवाब नहीं देंगे तो बुरा लगेगा, जवाब देंगे तो गलत होने की संभावना है, करें क्या? भगवान को स्मरण किया, प्रभु आप संभालो, हम तो आपका कार्य कर रहे हैं। तो भगवान प्रकट हो गए, जैसा सवाल था वैसा रूप बना के प्रकट हुए। हंस के रूप में बनकर के आए, वही हंस अवतार है। हंस के रूप में प्रकट हुए क्योंकि वो हंस नीर और क्षीर, पानी और दूध मिला के रख दो तो वो दूध पी लेता है और पानी को अलग कर देता है। नीर क्षीर का विवेक करने वाला है, यहां पर भी विवेक की आवश्यकता है, वही रूप लेकर के प्रकट हुए। कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने पहचान लिया और प्रणाम किया। लड़कों ने पहचाना नहीं सनकादिकों ने, लेकिन देखा पिताजी प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी कर लेते। उन्होंने भी प्रणाम कर लिया, लेकिन प्रणाम करने के बाद में और फिर पूछा कि आप कौन है। हंस भगवान से पूछा, हमारे पिताजी ने आपको प्रणाम किया, आप हैं कौन? और शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि सामने वाला जो पूछने वाला है, अगर आपको पता है कि वह कैसा है तो जवाब भी वैसे ही देना चाहिए। हंस भगवान ने वहां जवाब दिया, कहा कि तुम्हारा यह सवाल ही गलत है, आपने पूछा कि मैं कौन हूं यह पूछना ही गलत है। तो कहा क्यों? बोले जो तुम हो सो हम, हमने तुम में फर्क क्या, हमने तुम में अंतर कहा। सनकादिकों ने कहा कि नहीं, थोड़ी गलतफहमी हो गई लगता है, समझने में भूल हुई है, हमने आपके इस पार्थिव शरीर के बारे में पूछा है, हमने आत्मा के विषय में नहीं, आत्म तत्व से हम एक है, हम जानते हैं, हमने आपके पंचभूतात्मक शरीर से पूछा है कि ये कौन है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा कि उस दृष्टि से भी सवाल गलत है। तो कहा क्यों? बोले तुम भी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की बनावट हो, ये शरीर भी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी उसी की बनावट है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। शरीर की देह की दृष्टि से भी अंतर कहां है? 50 घड़े बने हुए हैं, मिट्टी तो एक ही है, 50 शरीर बने हुए हैं, बनाने वाले पदार्थ तो एक ही है, तो उससे भी अंतर कहां रहा? कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया कि अरे ये तो ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए हैं। और तब भगवान ने कहा कि तुमने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब देने के लिए मैं आया हूं। क्या प्रश्न है? वहां भगवान ने उत्तर दिया कि देखो तुमने कहा, और ये उत्तर हमें बड़े मन के हमारे मन को भाया। बोले तुमने प्रश्न किया कि मन से संसार को कैसे दूर करें, लेकिन ये भी सवाल गलत है। तो कहा क्यों? बोले मन और संसार दो नहीं है, एक ही है। मन से संसार को हटाया नहीं जा सकता, मन से संसार को दूर नहीं किया जा सकता। दरअसल मन ही संसार है, ये मन जहां जहां रहेगा वहां वहां संसार रहेगा। जब तक तुम मन के चक्कर में रहोगे तब तक संसार से छूट नहीं सकते। जब जब तुम मन की अवधारणा में पड़ोगे तब तक अगर तुम संसार को छोड़ना चाहते हो तो मन ही को छोड़ दो, मन को ही खत्म कर दो, मन को ही विस्मृत कर दो, मन से ही हट जाओ। संकल्प विकल्पात्मकम मनः जो कहते हैं, आप संकल्प और विकल्प की उच्चावस्था को प्राप्त हो जाओ, परे हो जाओ, कोई समस्या ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है, कहां कोई समस्या आने वाली है। आप ये सोचो कि सिक्के के एक पहलू दो पहलू होते हैं, एक तरफ एक रुपया लिखा है, दूसरी तरफ भारत का वो विजय स्तंभ बना हुआ है, और आप चाहो कि एक को हम निकाल लें, बड़ा मुश्किल है, वो जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप चाहो कि मन हमारा बना रहे और संसार दूर हो जाए, नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी समस्या हमको आध्यात्मिकता में जो नजर आई, वो सबसे बड़ी समस्या यही नजर आई कि हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे मन से हम संसार को दूर कैसे करें। हमारी सारी साधना इसी के लिए होती है, हमारा सारा जप तप सारा ध्यान सारा योग इसीलिए है कि मन से संसार को कैसे भगाएं। भगवान कहते हैं ये है ही गलत, ये धारणा ही गलत है, ये अवधारणा ही झूठी है कि कोई मन से संसार को दूर कर सकता है। जब संसार दूर होगा तो मन भी वहां से खत्म हो जाएगा। जिस समय पर तुम निद्रा में जाते हो, गहरी अवस्था में जाते हो, वहां मन होता है? हाँ, वहां मन नहीं होता, सुषुप्ति में मन नहीं होता, लेकिन स्वप्न में मन होता है तो संसार होता है। जहां मन होगा वहां संसार होगा, जहां मन नहीं है वहां संसार भी नहीं है। इसलिए मन को खत्म कर दो, इसलिए मन को हटा दो। अच्छा, तो मन को हटाएं? बोले नहीं नहीं, मन को भी मत हटाओ, क्योंकि मन को हटाने के चक्र में पड़ोगे तो फिर उलझ जाओगे। इसलिए कुछ हटाओ मत, कुछ भगाने की कोशिश मत करो, कुछ खत्म करने की कोशिश मत करो, तो कहलाने की कोशिश करो। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं कि आपके घर में अगर अंधेरा है तो आप क्या करते हो? प्रकाश को लाने की इंतजाम करते हो या ध्यान करते हो कि पहले हम प्रकाश आ जाएगा तब अंधेरा हटाएंगे? नहीं, पहले अंधेरा हट जाएगा फिर प्रकाश लाएंगे। अगर तुम ऐसी कोशिश करो, कई लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि पहले हम विरक्त हो जाए, संसार छूट जाए, संसार चला जाए, तब हम भगवान को लाएंगे। तुम्हारा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब परमात्मा आता है, ऐसी मान्यता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं भूल है। ऐसा कभी होता है कि पहले अंधेरा दूर हो जाता है तब प्रकाश आता है? ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी सारे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे, आप करके देख लीजिए, कितने भी ध्यान कर लीजिए, कितनी भी जप कर लीजिए, कितनी भी साधना कर लीजिए, और ये करने की कोशिश कीजिए कि पहले अंधेरा मिटाएंगे तब प्रकाश को लाएंगे, नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। या डंडा उठाकर खड़े हो जाइए कि मारेंगे पहले भगाएंगे इसको, उसके बाद में फिर हम प्रकाश खुलाएंगे, संभव नहीं। प्रकाश आएगा, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा, तुम्हारी कोशिशों से कुछ नहीं। लेकिन कई लोग कोशिश करते हैं, कई लोग प्रयास करते हैं। मैंने सुना है कि एक परिवार था, और पागल परिवार था, पागल ही कहेंगे उसको, कि रात भर सोते नहीं थे, वो दिन भर मेहनत करते, रात में सोते नहीं। चार पांच लोग थे परिवार में, आदमी ही आदमी थे, महिलाएं नहीं थी, तो सबने एक दूसरे को काम सौंप रखा था कि हम सोएंगे तो तुमको करना है। तुम काम क्या था? कहा कि टोकरी में रात भर ऊपर सिर पे उठा के और बाहर फेंकना है। क्या? अंधेरा फेंकना है। रात भर काम चलता था। उस परिवार में विवाह हुआ, पढ़ी लिखी एक महिला आई, जैसी अंधेरा होने लगा सब हड़बड़ी करने लगे, जल्दी करो जल्दी करो। तो कहा क्यों? बोले अंधेरे को भगाना है। पहले दिन तो इसकी समझ में नहीं आया, देखती रही रात भर तमाशा कि लोग उठाएं और बाहर बाहर फेंक करके आए। तो उसने पूछा, आप लोग करते क्या है? बोले हम लोग रात में मेहनत करते हैं, तभी तो ये उजाला होता है। अगर हम सो जाए तो उजाला ही ना हो, अगर हम सो जाए तो प्रकाश आए ही नहीं, हमारी मेहनत का परिणाम है। हम रात भर बाहर फेंक करके आते हैं अंधेरे को, तब उजाला आता है। पागल पर हंसी आई उसको, उसने कहा इनको समझाएं कैसे? और ऐसे लोग समझ नहीं सकते, इनको समझाना कठिन है। उसने कहा एक काम करो, आप लोग तो दिन भर मेहनत करते हो, मैं तो घर में अकेली पड़ी रहती हूं, ऐसा क्यों ना किया जाए कि ये काम हमको दे दो, मैं रात भर अकेली अंधेरे से लड़ूंगी, आप लोग सो जाइए। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। तो कहा आप विश्वास तो कीजिए, मैं अकेले कर लूंगी। लोगों ने भरोसा किया, बहू बड़ी अच्छी मिली भगवान की कृपा से, हमारा बोझ अकेले ढो रही है, सबको सुला दिया, खुद सो गई। सुबह जब इनकी नींद खुली, देखा प्रकाश, क्या बात है, बहू ने कमाल कर दिया, बहू ने कमाल किया, प्रकाश आया, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। इस सत्य को समझो और समझने की चेष्टा करो। आपके मन में वो ज्ञान, वो विवेक पैदा हुआ नहीं, अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। विवेक को कैसे लाएं, कल बताएंगे। सच्चिदानंद भगवान की, दो बार भगवान के नाम का स्मरण कर लें, दो
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की। ओम।